मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सो आए हम सब खुदा के हजूर झुकें और चंद लम्हों के लिए अपने दिल को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को, अपनी सारी ताकत को खुदावंद के सुपुर्द करेंगे, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखें हम सब के लिए बरकत और तरबियत और नसीहत का बायस ठहरे। सो आए हम खुदा के हजूर झुकें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज की सुबह के लिए, आए हुए तेरे तमाम लोगों के लिए। खुदावंद, आज के सारे वक्त में तो हम सब के साथ और तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे, और हम जो कुछ सीखें उसे अपनी जिंदगी में सुनकर कबूल करके बहुत सा फल लाने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 13वीं आयत। जैसे कि हम पहले भी सीख चुके हैं मोहर के बारे में, और मैंने आपको बताया कि हम बहुत कुछ इस आयत में से सीखेंगे। हम सीखेंगे रूहुल कुद्दस के नामों के बारे में, रूहुल कुद्दस के काम के बारे में, रूहुल कुद्दस की मोहर के बारे में, और ये चीजें क्यों अहम है, क्यों जरूरी है कि हम ईमानदार होते हुए सीखें। सो 13वीं आयत में पालूस रसूल कहता है, मेरे साथ आप इसे पढ़ भी सकते हैं, और यहां पर लिखा है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। जैसा कि हम सीख रहे हैं और मैंने आपको बताया के पालूस रसूल को क्यों जरूरत पड़ी लफ्ज मोहर का इस्तेमाल करने की। मोहर का मतलब हम देख सकते हैं, इसे छल्ला भी कहा जाता है, इसे अंगूठी भी कहा जाता है, अंगूठी को जाहिर करता है, और इसे मोहर भी कहा गया है। क्यों मैंने छल्ला या अंगूठी कहा है? क्योंकि पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में अंगूठी इस बात को जाहिर करती है कि कोई किसी के मुतहद या किसी की मलकियत है। मिसाल के तौर पर जब हमारे रिवाज में हमारे बेटे या बेटी की मंगनी की जाती है तो हम क्या करते हैं, छल्ला पहनते हैं, और इससे उस बेटे और बेटी को याद रहता है कि वो क्या है, उस बेटी जो आने वाले वक्त में उसकी बीवी बनेगी उसकी क्या है, उसकी जीवन साथी है, उसका जिंदगी का हिस्सा है, और वो उसके लिए तैयार किया गया है, और ये खुदा की तरफ से एक रस्म है जो हम करते हैं, यानी कि शादी की अंगूठी पहनाना, जिससे पता चल जाता है कि लड़का क्या है, शादीशुदा है। और यहूदी रिवाज में छल्ला और फिर अंगूठी, अंगूठी इस बात को जाहिर करती थी, इख्तियार को, हैसियत को, किसी की शनाख्त को कि वो कौन है। और आज हम देखेंगे कि लफ्ज मोहर का बाइबल मुकद्दस में हमें किस लिए पालूस रसूल कहता है कि तुम पर रूहुल कुद्दस की मोहर लगी, क्योंकि हम सब खुदावंद खुदा के मुतहद हैं, हम सब खुदा के लोग हैं, जिसमें से मैं चंद एक हवाला जात पढ़ूंगा, और फिर हम मुसरफ बेटे की जिंदगी में देखेंगे कि जब वो घर लौटा तो क्यों उसके बाप ने उसे अंगूठी पहनाई, उसे लिबास पहनाया और फिर जूती पहनाई। क्या बात और क्या हकीकत उस चीजों के पीछे थी। सो मेरे साथ आपने पहले एक हवाला पढ़ लिया है, कल हमने देखा था मत्ती 27 बाप उसकी 66 आयत में कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया उसके बदन को, तो यहूदियों ने कहा पिलातुस से कि तू पहरेदार बिठा दे। सो मोहर वहां पर इस बात को जाहिर करती है कि रूमी हुकूमत का इख्तियार था उस कब्र पर कि कोई भी उनकी खिलाफ वर्जी ना कर सके। और आप जानते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह की कब्र पर मोहर कर दी और फिर पहरेदारों को निगाहबानी के लिए बिठा दिया। और आप अगले ही बाप में जानते हैं कि खुदा ने अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। और फिर हम देखते हैं, आपको दानियल की किताब में दानियल की कहानी याद होगी। ये कहानी आपको दानियल 6 बाप उसकी 16-17 आयत में मिलेगी। और याद होगा कि दानियल को उस जुर्म में क्या किया गया, शेरों की गार में फेंका गया, मांद में फेंका गया कि ये अपने खुदावन खुदा की इबादत करता है, ये तेरे बुतों की और तेरे बादशाह बनाए हुए तमाम दूसरे चीजों की इबादत नहीं करता। तो दानियल को क्या किया गया, शेरों की मांद में फेंका गया। तो उसकी कब्र पर भी, माफ करना, कब्र पर नहीं, उसकी भी गार पर मोहर की गई। और ये मोहर किस बात को जाहिर करती थी, बादशाह के इख्तियार को, कि ये बात दुरुस्त है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। और फिर आप यूसुफ को देखते हैं पुराने अहदनामा में, जब फाराउन ने उसे इख्तियार दिया अपने तख्त पर और उसे अपने रथों पर बिठा कर, रथों से मुराद ये घोड़ों जैसे हमारे पास टांगा होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा रथ, जब को बादशाह निकलता था तो उसके आगे रथ जाता था जिससे पता चलता था कि बादशाह शहर में है या गली या बाजार में है, और सब उसके सजदे में झुक जाते थे और सब उसकी आवाज को सुनते थे। सो फाराओन ने क्या किया, अपनी अंगूठी उतार कर यूसुफ को दी कि वो उस मुल्क पर क्या हो, हाकम हो। ये बातें क्यों आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इसका बहुत गहरा तल्लक है हमारी जिंदगी से, कि उस हकीकत को जाने कि जब हम पर मुहर होती है तो हमारी जिंदगी में किसका इख्तियार आता है। और एक और बात, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में अंगूठी इख्तियार, कुदरत और हैसियत को जाहिर करती थी। इसलिए आज हम देखेंगे मुसर बेटे की कहानी को, कि वहां पर क्यों जब उसके बाप ने वापस लौटा तो उसे ये चीजें दी। मेरे साथ देखें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावन यीशु मसीह की अंजील, उसका 15 बाप। और यहां पर हमें जिक्र मिलता है खोई हुई भेड़ के बारे में, खोए हुए दिनार के बारे में, उन पैसों के बारे में जो 10 दिरहम थे, दिनार थे, जो खो गए। और फिर हमें तीसरी मिसाल और हकीकी कहानी जो मिलती है, मिसाल नहीं से कहानी कह सकते हैं, सच्ची कहानी का जो जिक्र मिलता है, हम इसे जब पढ़ते हैं तो 11वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। फिर उसने कहा किसी शख्स के दो बेटे थे। यहां पर यीशु मसीह बात कर रहा है फकीयों फरीसियों से, क्योंकि यीशु मसीह पर उन्होंने अल्जाम लगाया कि तू गुनाहगारों, शराबियों और दुनिया के ठकराहुओं के साथ बैठता खाता पीता है। तो यीशु मसीह ने कहा, फिर किसी शख्स के दो बेटे थे, उनमें से छोटे ने अपने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझे पहुंचता है मुझे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त अकाल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। ये बेटा जिसने अपना सारा रुपया पैसा लिया, अपना रुपया पैसा लेकर उसे खर्च किया, और जब वो भूखा हो गया, नंगा हो गया, उसके पास कुछ ना रहा, फिर फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के हां जा पड़ा, उसने उसको अपने खेत में सूअर चुराने भेजा। यहूदी लोग सूअरों का काम करने को बहुत ही बेइज्जत या कहते थे कि छोटे दर्जे का काम समझते थे। यहां पर वो बेटा है जिसने अपने बाप की नाफरमानी की और फिर इस तरह के काम में पड़ा कि सूअर चराने पड़े। और हालांकि लिखा है, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। यहां पर नौबत पहुंच पड़ी कि वो सूअर का खाना खाता था, फलियां खाता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। फिर उसने यहां पर जो बेटा खो गया था, जो अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए गया दूसरे मुल्क में, उसने सोचा कि मेरे बाप के नौकरों को सालन के साथ अच्छी रोटी मिलती है, लेकिन यहां पर मैं भूखा मर रहा हूं। और फिर 18वीं आयत में उसने क्या कहा, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा के फिर तेरा बेटा कहलाओ, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। 20वीं आयत, पस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और बूसा लिया। यहां पर हम देखते हैं जब कोई गुनाहगार अपने खुदा के पास वापस आता है, यहां पर ये तस्वीर है, जब हम गुनाह में गिरते हैं या खुदा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, तो अगर हम खुदा के पास आते हैं तौबा के लिए, तो खुदा हमें इसी तरह मिलता है। वो हम पर तरस खाता है, वो हम पर अपना प्यार, अपना फजल, अपना रहम जाहर करता है, हमें इत्मीनान देता है। और यहां पर ऐसा ही हुआ कि बाप ने उसे गले से लगा लिया, उस पर तरस खाया। और फिर 21वीं आयत में क्या लिखा है, बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बहुत दफा हम भी जब गुनाह करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इस लायक नहीं कि फिर खुदा जो हैसियत या हालत खुदा में है हमारी है, उस पर खुदा हमें दोबारा खड़ा करे। लेकिन ये गलत सोच है। आगे हम देखेंगे कि खुदा बाप हमें कौन सी हैसियत देता है, और यहां पर हम सीखेंगे कि मोहर क्यों की गई है हम पर। 22वीं आयत, बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा जामा निकाल कर, जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। यहां पर ही हम रुकेंगे। यहां पर खुदा बाप को जाहर किया जा रहा है कि जब हम तौबा करते हैं, वापस आते हैं, तो वो हमारे उस गंदे लिबास को उतार देता है और हमें अच्छी पोशाक पहनाता है। पहली बात जो हमारी नई हालत को जाहर करती है, खुदा के साथ नया रिश्ता जाहर करती है। और फिर क्या कहा गया है, उसे अच्छे से अच्छा जामा पहना, जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती। यहूदी रिवाज के मुताबिक जैसे ये बेटा पहले ही अपना सब कुछ खर्च कर चुका था, उसे कोई हक नहीं था अपने बाप के हक घर में, अब जब वह वापस आया तो उसके बाप ने उसे अपनी अंगूठी दी। यहूदी रिवाज में जब किसी के पास जो अमीर आदमी होता था, अंगूठी के ऊपर उसके दक्षत जिसे कहते हैं, दक्षत या उसका नाम लिखा हुआ होता था। और उस दौर में लोग क्या करते थे, उस अंगूठी को इस्तेमाल करते थे अगर कोई चीज खरीदनी होती थी, अगर कोई खेत खरीदना होता था या कारोबारी कोई काम करना होता था, तो ये इस बात को जाहर करता था कि वो आदमी अपना क्या कहते हैं कि उसने जमानत दी है। ये उसके इख्तियार को, उसकी दौलत शोहरत को जाहर करती थी। सो यहां पर ये वो बेटा है जो गुनाह, जो गुमशुदगी में जिंदगी गुजार चुका था, वापस आया तो उसके बाप ने उसे फिर इख्तियार दिया, उसे फिर उसकी दोबारा हालत में बहाल किया। और यहां पर हम सीखते हैं कि उसे इख्तियार दिया गया उसके घर में और फिर उसे जूती पहनाई गई। यहूदी रिवाज में नौकर घर में जूती नहीं पहन सकते थे। जब कोई नौकर किसी मालक के घर में काम करता था तो वो नंगे पैर उस घर में काम करता था, उसे इख्तियार नहीं था। इसीलिए उसके बाप ने उसे जूती पहनाई जो इस बात को यह जाहिर करती थी कि वो नौकरों जैसा उससे बर्ताव नहीं करेगा बल्कि फिर उसे अपना बेटा बनाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ हुआ। हम जो दुनिया में थे, हम जो गुनाह में थे, हम जो खुदा से दूर थे, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने के बायस रूह कुद्दस की मोहर हम पर लगी जो इस बात को जाहिर करती है कि हम खुदा की मलकियत हैं, हम खुदा के लोग हैं, हमें खुदा के घर में बेटे और बेटियां होने का हक मिला है। इसीलिए पालूस रसूल कहता है कि तुम पर रूह कुद्दस की मोहर हुई, और इसीलिए पालूस रसूल ने लफ्ज मोहर का इस्तेमाल किया कि हम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे गए हैं, हम गुलाम नहीं बल्कि बेटे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं गलतियों चार बाप उसकी चार बाप को जब देखते हैं तो वहां पर उसकी छठी आयत में क्या कहता है पालूस रसूल, और चूंकि तुम बेटे हो, गलतियों चार बाप उसकी छठी आयत, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। पस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा है तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। खुदा ने हमें उन तमाम नेमतों बरकतों का वारिस ठहराया है, हमें आसमान की बादशाही में और इस जमीन पर बहुत ही उम्दा हालत दी गई है। हमारी हालत क्या है? खुदा के बेटे और बेटियां। हमारी पहचान क्या है? खुदा के लोग। हम क्या हैं? खुदा का मकदस। पालूस रसूल इसीलिए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्दस का मकदस हो? सो इसीलिए हम पर मोहर हुई है। और सवाल ये है, इससे पहले अपने घरों को जाएं, अब हम इस इख्तियार को किस तरह इस्तेमाल करेंगे? क्या इस पैगाम के बारे में अपने बच्चों को सिखाएंगे? क्योंकि जिस तरह किसी की जब मंगनी की जाती है तो वो लड़की उस लड़के के नाम कर दी जाती है, जिस तरह जब कोई शादी कर लेता है तो यहाँ पर हमारे और अपने रिवाज में अंगूठी पहनाई जाती है, और निकाह के वक्त कहा जाता है कि अपने गम, खुशी, बीमारी, हर तरह की हालत में अपनी बीवी से वफादार रहूंगा क्योंकि वो मेरा जिस्म है। इसी तरह रूहुल कुद्दस भी हमसे वफादार रहता है। जरूरत है कि हम उससे वफादार रहें। आए हम खुदा के हुजूर झुकें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे वफादार है, और हालांकि हम बेवफा भी हो जाते हैं लेकिन तू अपना ख्याल, अपनी सोच नहीं बदलता, बल्कि हमें बेटों की तरह मिलता है, हमें अपने बेटे बनाता है, इख्तियार देता है, हमारी सारी गुनाह आलूदा गंदे कपड़ों को उतार कर हमें अच्छा जामा पहनाता है। सो खुदा बाप, आज हम जो कुछ सीख चुके हैं कि हम तेरी मलकियत हैं, हम सबको बड़ी बरकत दे, और आने वाले दिनों में जो कुछ सीखें सबके लिए बरकत का बायस ठहरे। पूरी कलीसिया को छू, बड़ी बरकत दे, हर तरह की जरूरियात को पूरा कर, और उन तमाम खानदानों के लिए दुआ करते हैं जो बीमारी, मुश्किल, परेशानी में हैं। यीशु मसीह के नाम में उन सब को छू, शफा दे, बरकत दे, बहाल कर, कमियों कमजोरियों को दूर कर। आमीन।